इस चांद से हसीन चेहरे पर ये उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? निशांत ने प्यार से अर्पिता के चेहरे को छूते हुए सवाल किया। अर्पिता ने अपनी मासूम निगाहों को उठाकर उसे देखा और चेहरे पर उदासी लिए मायूसी भरे स्वर में जवाब दिया, मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है। बात नहीं की तुमने उनसे? निशांत की उंगलियां अर्पिता के गाल पर थिरकने लगीं। उसने अब निचले होंठ को बाहर निकालते हुए अपना मुंह बना लिया। की, तभी तो और भी ज्यादा याद आ रही है, बोलते हुए वो रुआंसी हो गई और उसे ऐसे देखकर निशांत घबरा गया। हे, रोना नहीं है, बस दो तीन दिन इंतजार करो, मैं ले चलूंगा तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवाने। अर्पिता ये सुनते ही एकदम चुप हो गई और आंखें बड़ी बड़ी टकोर टकोर उसे देखने लगी। सच्ची? मुच्ची मेरी जान, बस तुम रोना मत। निशांत ने प्यार से उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाया और उसकी भीगी आंखों की नमी चुराने लगा। पर अर्पिता को अब भी उस पर विश्वास नहीं था। उसने निशांत को खुद से दूर किया और भौहें चढ़ाए उसे घूरने लगी। पक्का लेकर चलोगे? अगर अपनी बात से मुकरे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। उसकी धमकी सुनकर निशांत एकाएक उसके करीब चला आया और अपनी उंगली उसके जुल्फों में उलझाते हुए कशिश भरे अंदाज में बोला, कभी पकड़ भी लिया करो, कसम से भूलकर भी छोड़ने नहीं कहूंगा। निशांत, बकवास नहीं कीजिए। अर्पिता ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे घूरा। अब की बार निशांत चिढ़ सा गया। बताओ, रोमांस तुम्हें बकवास लगता है? और लड़ने की बारी आए तो तुम झांसी की रानी बनकर भाला लेकर मेरी गर्दन पर चढ़ जाती हो? मैं बात नहीं करूंगी आपसे। अपनी इस तारीफ पर अर्पिता ने नाराजगी से गालों को फुला लिया और वहां से जाने लगी। ये देखकर निशांत के सारे सुरताल हिल गए और घबराकर वो उसकी ओर लपका। हे अप्पू, नाराज होकर कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, आप भी आएंगे साथ? अप्पू चिढ़ते हुए उसकी ओर पलटी। निशांत के कदम उसके करीब आकर ठहरे और निगाहों में प्यार शरारत बनकर समा गया। प्यार से बुलाओ तो तुम्हारे साथ वहां भी जाने में कोई ऐतराज नहीं। अप्पू कुछ पल भौहें से कोड़े उसे घूरती रही, फिर मुंह ऐंठ लिया। अच्छा, ये तो बताओ, अचानक दीदी से मिलने का इतना मन कैसे करने लगा तुम्हारा? निशांत ने चालाकी दिखाते हुए बात का रुख मोड़ा और राधिका का जिक्र आते ही अर्पिता अपनी नाराजगी तक भूल गई। दीदी शायद प्रेग्नेंट है, अर्पिता ने कुछ उलझन भरे स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर निशांत चौंक गया। क्यों? निशांत का सवाल सुनकर अर्पिता खींच उठी और हाथ बांधे तीखी निगाहों से उसे घूरने लगी। क्या मतलब क्यों? प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वो? निशांत ये सुनकर सकपका गया और तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि या तो प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, शायद क्यों है। अब जाकर अर्पिता को बात समझ आई और चेहरे के कठोर भाव भी कुछ कोमल हुए, क्योंकि अभी उन्होंने बस किट से टेस्ट किया है, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप नहीं करवाया है, इसलिए श्योर नहीं है। ओ, निशांत ने होठों को गोल करते हुए आवाज निकाली और मन किन्हीं ख्यालों में खो गया। हाँ, और इसलिए मुझे उनसे मिलना है। अर्पिता जैसे ही चुप हुई, निशांत उसके करीब चला आया और बेहद मोहब्बत से उसे देखने लगा। अप्पू, हमारी शादी को भी 2 साल हो गए, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? अर्पिता ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। निशांत अब जरा खुलकर मुस्कुराया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। लिटिल अप्पू और लिटिल निशांत को लाने के बारे में। ये सुनते ही अर्पिता के चेहरे के भाव बदल गए। निशांत के सीने पर अपनी हथेली टिकाते हुए उसने उसे खुद से दूर किया और तिरछी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए निगाहों से उसकी खिल्ली उड़ा दी। अभी जो आपके लिटिल भतीजे भतीजी आएंगे ना, उन्हें कैसे संभालेंगे पहले ये सोच लीजिए, उसके बाद अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा। उसकी बात सुनकर निशांत का मुंह उतर गया और वो बुरी तरह झल्लाते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगा, यार ये तो चीटिंग है हमारे साथ, भैया भाभी अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी हमें सौंपकर खुद क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ हमारी गाड़ी एक ही स्टेशन पर अटकी हुई है। लगता है अब बात करनी ही पड़ेगी कि अपने माल की जिम्मेदारी खुद लें ताकि हम भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करें, हमारी गाड़ी भी स्टेशन से कुछ आगे बढ़े। निशांत जैसे ही चुप हुआ, कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अर्पिता ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। बड़बड़ाना बंद कीजिए और जाकर दरवाजा खोलिए, लगता है आ गए दोनों। निशांत मुंह बनाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही निशांत ने दरवाजा खोला, दो नन्हे कदम दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और जाकर सीधे अप्पू के पैरों से लिपट गए। दक्ष और दिविशा दोनों शैतान अपने चाचू से ज्यादा चाची के करीब थे और लाडली भी। निशांत से ज्यादा हक वो दोनों जताते थे अर्पिता पर। स्वभाव से चंचल अर्पिता भी उन शैतानों संग सब भूलकर बच्ची बनी शरारतें करने लगती और बेचारा निशांत बस खींच कर रह जाता। दिन में तो फिर भी ठीक था, पर अब एक नई जिद पकड़ ली थी दोनों ने। रोज रात को उनके रूम में धावा बोल देते। दोनों आधी आधी रात तक जागकर पूरे रूम में हुड़दंग मचाते रहते। उन्हें सुलाने में निशांत को नानी याद आ जाती थी, और जब तक वो दोनों शैतान सोते, सारे दिन की थकी हारी अर्पिता भी सो जाती, और वो उसके साथ प्यार भरे कुछ पल बिताने को भी तरस जाता। आज भी यही हुआ। दोनों शैतान सोए तब तक अर्पिता भी सो गई। आज कोर्ट में हियरिंग थी उसके केस की, सो थक भी गई थी। निशांत ने दोनों बच्चों को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर अर्पिता की ओर चला आया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर उसे भी ब्लैंकेट से कवर किया और खुद दूसरी ओर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह राधिका तैयार तो हो गई, पर चेहरे पर घबराहट और नर्वसनेस साफ झलक रही थी। माधव कुछ देर तो नजरअंदाज करता रहा, फिर उसके पास चला आया। राधिका के कंधों को थामते हुए उसने उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। राधिका आंखें बड़ी बड़ी किए घबराई हुई सी उसे देखने लगी। माधव ने उसकी हथेली थामी तो चौंक गया, उसके हाथ बर्फ से ठंडे थे। राधिका, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? बस एक छोटा सा ब्लड टेस्ट ही करवाना है, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि आप सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर हुई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तब भी कोई बड़ी बात नहीं, आगे हम बेबी प्लान कर लेंगे, तो आप टेंशन लेना बंद कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। माधव बेहद प्यार और नरमी से समझा रहा था उसे। राधिका कुछ शांत भी हुई और एक टकुर उसे देखने लगी। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आप दुखी या निराश नहीं होंगे? इसमें दुखी या निराश होने वाली कौन सी बात है? अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी होंगे तो आगे हो जाएंगे, इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको खुशी होगी? ये सवाल पूछने की जरूरत है आपको? माधव ने सवाल के बदले उल्टा उसी से सवाल कर लिया और गहरी इंटेंस निगाहों से उसे देखने लगा। राधिका कुछ पल उन आंखों में टकटकी लगाए देखती रही, फिर हौले से इनकार में सर हिला दिया। गुड, अब अपना मूड ठीक कीजिए, मम्मी ने आपको ऐसे देख लिया तो परेशान हो जाएंगी। माधव इतना कहकर जैसे ही राधिका की हथेली छोड़कर उठने लगा, राधिका ने हड़बड़ाते हुए उसकी हथेली को थाम लिया और सर उठाकर घबराई हुई सी उसे देखने लगी। आप कल रात की बातों के कारण अब भी नाराज हैं मुझसे? क्या आप मुझे अपनी बीवी की गलती पर नाराज होने का अधिकार भी नहीं? एक बार फिर उसकी वो गहरी काली सर्द निगाहें राधिका को घूर रही थी। राधिका उसका सवाल सुनकर सक पका गई। नहीं, मतलब हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि हक है आपको, मुझसे गलती हुई है तो आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, मैं आपकी नाराजगी दूर करके मना लूंगी आपको, पर ज्यादा नाराज मत होइएगा और ज्यादा बेरुखी भी मत दिखाइएगा। क्यों? माधव ने भौं जागते हुए सवाल किया और गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। राधिका कुछ पल उन आंखों में टकटकी लगाए देखा, फिर नजरें झुका ली। मुझे पता है मैंने अपने व्यवहार और बातों से आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, आपकी भावनाओं को आहत किया है, आपको अजय जैसा समझकर बहुत गलत किया है आपके साथ। आपकी नाराजगी गुस्सा सब जायज है, पर मुझे आपकी मोहब्बत की आदत है, नाराजगी ज्यादा वक्त तक नहीं सह सकूंगी और बेरुखी तो एक पल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए जल्दी मान जाइएगा, बदले में आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जो कहेंगी वो करेंगी।
सोच लीजिए, बाद में अपनी ही कही बात पर पछताना न पड़े आपको। माधव की सर्द भारी आवाज राधिका के कानों से टकराई और राधिका आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। आप क्या करवाने वाले हैं मुझसे? वो तो आपको बाद में पता चलेगा, पर पहले बताइए, श्योर हैं आप कि जो मैं कहूंगा आप करेंगी? माधव ने सस्पेंस क्रिएट किया, उसके चेहरे पर रहस्यमयी भाव मौजूद थे। अब राधिका को उलझन सी होने लगी, ना हाँ कहने का मन था ना ना। उसे चुप्पी साधे देखकर माधव ने खफा खफा निगाहों से उसे देखा और तलखी भरे स्वर में बोला, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, आप बस बोलती हैं, इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है आपको मुझसे, इसलिए इतना सोचना पड़ रहा है। राधिका जो कुछ उलझन में फंसी थी, माधव की बात और उसके चेहरे पर मायूसी के भाव देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है आपसे, कहिए क्या करना होगा मुझे? सोच लीजिए, बाद में कदम पीछे नहीं हटा सकेंगी आप। माधव जैसे उसे वार्निंग कर रहा था, राधिका दिल ही दिल में घबराने लगी कि जाने वो क्या करवाएगा उससे, पर चेहरे पर उसे जाहिर नहीं किया और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नहीं हटूंगी अपनी बात से पीछे, अब कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने दिल पर मुझे एक अधिकार देना होगा, दे सकेंगी? माधव संजीदा निगाहों से उसे देख रहा था, उसकी बात सुनकर राधिका के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। मेरे दिल पर तो हमेशा से आपका ही अधिकार था, और दिल क्या, मेरे रोम रोम पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, मैंने तो बहुत पहले खुद को आपको समर्पित कर दिया है। राधिका का ये जवाब सुनकर माधव के चेहरे के भाव जरा बदल गए और उसने गंभीरता से कहा, ऐसे नहीं राधिका, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैंने एकाधिकार की बात है, यानी आपके मन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए, वहां भूल कर भी कभी किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए, आपके बीते कल की परछाई भी हमारे आज और आने वाले कल पर नहीं पड़नी चाहिए, मैं उस शख्स का जिक्र भी आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता जो आपकी दुखों की वजह है। अब राधिका को उसकी बात की गहराई समझ आई और कुछ सोचते हुए उसके सिमटते लब एक बार फिर फैल गए। अब से आपको मेरी बातों, मेरे एहसासों, मेरे जज्बातों सब में सिर्फ और सिर्फ आपका जिक्र नजर आएगा। इस दिल को अब आपके अलावा किसी और के बारे में सोचने की इजाजत नहीं। कर पाएंगी आप ऐसा? माधव को शायद शक था, होना लाजमी था। इन 2.5 सालों में वो अपने पास्ट को नहीं भूली, फिर एक दिन में कैसे सब भुला देगी? माधव का सवाल सुनकर राधिका के मुस्कुराते लब सिमट गए। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा पास्ट मेरे वजूद का अहम हिस्सा बन गया है। मैं नहीं भी चाहती, पर जब स्थितियां पहले जैसी बनती हैं तो मेरा पास्ट मुझ पर हावी होने लगता है। पर कल मुझे एहसास हो गया कि मैं आपके और अपने साथ बहुत गलत कर रही हूँ। अपने पास्ट को हमारे बीच लाकर हमारे रिश्ते को खराब कर रही हूँ, और मैं आपको खो नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। इसलिए अब मैं उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दूंगी। अब मैं अजय को मुझसे मेरी खुशियां और आपको छीनने नहीं दूंगी। उसे कभी हमारे बीच नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। गुड, बस ऐसे ही खुद को स्ट्रांग बनाकर उन बुरी यादों से लड़कर आगे बढ़ना है। माधव ने उसके काल को अपनी हथेली से थपथपाया और हल्की मुस्कान उसके लबों पर ठहर गई। उसे मुस्कुराते देखकर राधिका के मन में भी सुकून उतरा। वैसे मेरी माफी पाने के लिए आपको कुछ और भी करना होगा, माधव फिर सस्पेंस क्रिएट करने लगा, जिससे राधिका परेशान हो गई। अब क्या करना होगा मुझे? मुझे अपनी जैसी एक प्याली सी गुड़िया का पिता बनाना होगा। कर सकेंगी आप ऐसा? माधव लबों पर मीठी सी मुस्कान सजाए बड़े ही प्यार से उसे निहार रहा था, जबकि राधिका के माथे पर कुछ लकीरें उभर आई थी और वो विचलित सी उसे देखने लगी थी। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ या नहीं होती हूँ, दोनों ही स्थिति में बच्चे को दुनिया में आने में वक्त लगेगा। मैं इंस्टेंट तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और लड़का होगा या लड़की ये तो भगवान के हाथ में है। फिर मैं कैसे आपकी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मुझे पिता कहलाने का मौका और खुशी तो दे सकती हैं आप। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार बढ़े, इस घर में भी बच्चे की किलकारियों की आवाज गूंजे, हमारे बच्चे के नन्हे कदम इस आंगन में पड़े, हमारी जिंदगी में भी कोई आए जो अपनी तोतली जुबान में हमें मम्मी पापा कहकर पुकारे, जिसकी मासूम फरमाइशों को मैं पूरा करूं, जिसकी उंगली थाम कर उसे चलना सिखाऊं। और मैं इन खुशियों को आपके साथ महसूस करना चाहता हूं। इन खुशियों के बीच और कोई ना आए, कोई भी नहीं। राधिका कुछ पल टकटकी लगाए उसे देखती रही। कितना कुछ सोचा हुआ था उसने, कितनी ही छोटी छोटी अधूरी ख्वाहिशें पूरा होने को मचल रही थी। मैं आपकी इन ख्वाहिशों को जरूर पूरा करूंगी, राधिका का जवाब सुनकर माधव ने मुस्कुराकर उसके सर को चूम लिया। राधिका के मन में बहुत कुछ चल रहा था और मन ही मन वो एक फैसला कर चुकी थी। To be continued.